भजन संहिता 116। आम तौर पर भजन संहिता 116 की एक ही व्याख्या की जाती है कि ये भजन प्रभु यीशु मसीह के दुखों के बारे में बताता है और ये मसीह संबंधी भजन है। मसीह इसमें मुख्य पात्र है। भजन 116 पद 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। इस भजन का पद 15 इस बात का प्रमाण है। ये तो इस भजन की पहली व्याख्या है। इस भजन की दूसरी व्याख्या के अनुसार मृत्यु के संकटों में से होकर गुजरने वाली इसराइल जाति है। इसराइल जाति संपूर्ण संसार में तितर बितर हुई। उन्होंने शोक व संकट भोगा और उन्होंने इस घड़ी में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी विनती सुनी और उन्हें छुटकारा दिया, जिससे वे जीवित रहते हुए स्वयं को यहोवा के सामने जानकर नित चलते रहे। इस प्रकार से लोग इस भजन में इसराइल जाति को देखते हैं। परंतु यदि भजन 116 को ज्यों का त्यों पढ़ा जाए तो भी इसमें बहुत सी बहुमूल्य बातें हमें मिलती है। जो व्याख्याएं इस भजन की लोगों ने की है उनसे भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप तो जानते ही हैं कि मैं पवित्र शास्त्र की व्याख्या नहीं करता। व्याख्या करने का मेरा ढंग या स्टाइल थोड़ा भिन्न प्रकार का है। मैं किसी भी शब्द के मूल अर्थ को लेकर पढ़ता हूं और खोजता हूं कि उस शब्द का क्या अर्थ है। आप भी किसी शब्द को लेकर इसी प्रकार उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इस भजन को ऊपरी तौर से पढ़ने पर आप पता लगा सकते हैं कि भजनकार कुछ ऐसी बातें करता है जहां वो बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गया था और सोचने लगा था कि वो मर ही जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा और उसके स्वस्थ होने की आशा नहीं है। तब वो परमेश्वर से विनती करने लगता है कि परमेश्वर उसके प्राण बचाए। इस प्रकार ये भजन इस सोच के आधार पर रचा गया है कि अब मैं मर ही जाऊंगा। भजन 116 पद 3 से लेकर 8 तक। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की साकेति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने मेरे उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। इस प्रकार भजनकार वास्तव में सोचता था कि वो मरने वाला है। तब वो विनती करता है और परमेश्वर उसकी विनती को सुनकर उत्तर देता है और उसे चंगा कर देता है। इसलिए वो चंगाई पाने के बाद इस भजन का आरंभ करता है और कहता है, भजन 116 पद 1, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। जब मैं सोचता था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब मैं सोचता था कि मैं मर ही जाऊंगा, जब मैं मृत्यु के अधीन पड़ा था और ऐसी दशा में मैंने जब परमेश्वर को पुकारा तो उसने मेरी प्रार्थना सुनी, उसने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। वे उत्तम भावनाएं जो भजनकार के मन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति उठी, वे इसलिए उठी क्योंकि उसने अधोलोक की साकेती से छुटकारा पाया था। वो मरने ही वाला था परंतु परमेश्वर ने उसे बचा लिया। परिणाम स्वरूप वो अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहता है, भजन 116 पद 1, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। भजन 116 पद 2, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। भजनकार ने वास्तव में सीख लिया था कि परमेश्वर से विनती करने का महत्व क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर ने विनती को सुना और उत्तर दिया, क्योंकि उसने मुझे मृत्यु से बचाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। भजन संहिता 116 पद 3, मृत्यु की रस्सिया मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की साकेति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। यहां पर जिस इब्रानी शब्द शियोल का अनुवाद अधोलोक किया गया है उसका अर्थ है कब्र, जिसमें मृतक लोग रखे जाते हैं। कब्र या शियोल दुष्ट मृतकों के लिए पीड़ाओं और दुखों का स्थान माना जाता था, परंतु इसका अर्थ कब्र भी हो सकता है। मसीह की मृत्यु से पहले जो मरे वे सब शियोल में गए, जो मृतकों की आत्माओं के रहने का स्थान है। उस समय शियोल हेनिस या नरक दो भागों में विभाजित था। लूका 16 अध्याय में यीशु ने इसके विषय में बताया है, जो धनवान प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था मर जाता है और नरक में या अधोलोक में जाता है। कंगाल लाजर भी, जो उसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, जिसके शरीर पर घाव थे और जो मेज पर से गिरे चूर चार और झूठन खाकर पेट भरता था मर जाता है और स्वर्ग दूतों द्वारा अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है। अब्राहम की गोद उस स्थान का अंतर दिखाती है जहां धनवान पड़ा था। धनवान उस पीड़ा के स्थान में पड़ा हुआ अपनी आंखें उठाकर देखता है कि अब्राहम उससे बहुत दूर है और लाजर उसकी गोद में आराम से है। तब वो धनवान कहता है, हे पिता अब्राहम, दया करके लाजर को भेज दे। पुराने नियम में जो धर्मी लोग मर जाते थे, हालांकि वे पवित्र जन थे, तो भी शियोल में जाते थे, अर्थात कब्र में जाते थे, जहां पर रहते हुए वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने का इंतजार करते थे। मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य यही था कि इन कैदी आत्माओं को स्वतंत्र करे, बंदीगृह के द्वार खोले और बंधुओं को आजाद करे। इसलिए जब यीशु मरा तब वो अधोलोक में उतरा, जैसा कि प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। पत्रस अपनी पत्री में और पौलुस भी एफिसियों की पत्री के चौथे अध्याय में इसका उल्लेख करता है। एफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 8, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। इससे पहले लोगों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव था कि वे मसीह यीशु के बलिदान के बिना स्वर्ग में जा सके। बैलों और बकरों का लहू उनके पापों को दूर नहीं करता है, ये अनेक अपराधों को ढांक तो सकता है और उन्हें मिटा नहीं सकता। पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तक यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर अपने लहू से हमारे पापों को नहीं मिटा दिया, तब तक स्वर्ग के द्वार नहीं खुले थे। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 11 पद 25 और 26, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हम तुरंत ही प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 4 से लेकर 8 तक, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अतः मैं कभी मरूंगा नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। मुझे ये सोचने पर भी घृणा आती है कि मैं इस मरणहार देह में सदैव जीवित रहूं, जो दुर्बल होती जाती है, और एक दिन वो समय आता है जब लोगों को आपके मुंह में भोजन डालना पड़ता है और आपके मुंह के चारों ओर लार टपकती है और आप केवल लेटे रहते हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि आपका क्या हालचाल है, आप कैसे अनुभव कर रहे हैं। तब आप कहते हैं ये सब सहने से बाहर है और हालत खराब है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इस दुर्बल वो नाशवान देह में से निकलकर ऐसे भवन में प्रवेश करूंगा जो परमेश्वर का है। मैं उस स्थान में प्रवेश करूंगा जिसे तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया हुआ है। तब मेरी पत्नी मेरे पते के बदल जाने की सूचना लोगों को भेजेगी। मिस्टर चक अब इस मरणहार नाशवान डेरे को छोड़कर उस सुंदर स्थान पर रहते हैं जो परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए उद्धार के कार्य को पूरा करने से पहले पुराने नियम में जितने भी धर्मी जन मरते थे वे सब शियोल में जाते थे, जहां पर अब्राहम की गोद में उन्हें शांति दी जाती थी। ये शांति तब तक उन्हें दी गई जब तक कि मसीह ने क्रूस पर उद्धार का कार्य पूरा नहीं कर लिया और अधोलोक में जाकर अपनी विजय का सुसमाचार न सुना दिया और अधोलोक के फाटक न तोड़ दिए और बंदियों को स्वतंत्र करके न ले गया, जहां वे महिमा में उसके साथ रहने लगे। इन सब कारणों से यहां भजनकार अधोलोक का उल्लेख करता है और कहता है, भजन संहिता 116 पद 3 से लेकर 5 तक, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की साकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहां पर पद 3, 4 और 5 पर विशेष ध्यान दे। जो लोग उपदेश बनाने में रुचि रखते हैं उन्हें सहायता प्राप्त हो सकती है। पद 3 में वो बताता है कि वो कहां पर था, वो मृत्यु के निकट था, मरने ही पर था। पद 4 में वो बताता है कि उसने प्रार्थना की और परमेश्वर को पुकारा, और पद 5 में बताता है कि उसने क्या सीखा। उसने सीखा कि यहोवा अनुग्रहकारी, धर्मी, वो दयालु है, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। जब आप परमेश्वर के बारे में सोच विचार करते हैं तो ये बड़ी अद्भुत बात होती है। पिछले सप्ताह इस पत्रिका में खगोल शास्त्रियों की आकाश गंगा के संबंध में खोजबीन के बारे में पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आकाश गंगा केवल 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी दूर है। हमारी आकाश गंगा केवल 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है। वे इसे अंतरिक्ष से अंतरिक्ष तक जाने वाली दीवार कहते हैं। वैज्ञानिक इनमें बहुत रुचि रखते हैं और बड़े बड़े सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वे लोग स्वर्ग की दीवार का पता लगा पाएंगे या नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष के आगे तो परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? मेरे लिए सच्चाई बड़ी अद्भुत है कि जिस परमेश्वर ने इस विस्तृत संसार की रचना की, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है, जब हम संकटों और समस्याओं में पड़े हुए उसे पुकारते हैं। परमेश्वर इतना महान होते हुए भी हमारा ध्यान रखता है, हमारी ओर कान लगाता है। बड़ी अद्भुत बात है। ना केवल वो हमारी विनतियां सुनता है, परंतु साथ ही वो दयालु और धर्मी भी है। जी हाँ, वो अनुग्रहकारी है। भजन संहिता 116 पद 6। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। क्या आपको इस बात से हर्ष नहीं होता कि आप भोले हैं? भोले होना बड़ी अच्छी बात होती है। मैं अक्सर बहुत से ऐसे लोगों को पाता हूं जो परेशान रहते हैं। जब आप दिखावटी जीवन जीते हैं और आपके दो चेहरे होते हैं तो आप परेशान होते हैं। जब आप वैसा जीवन जीते हैं जैसे आप स्वयं हैं, तो आप भोले मनुष्य बन सकते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता 116 पद 6 में, जब मैं बलहीन हो गया था। यहां पर फिर से वो जब मरने ही वाला था उस समय की स्थिति की बात करता है, परंतु परमेश्वर ने उसे बचा लिया। आगे भजन कहता है, पद 6 और 7, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने मेरा उपकार किया है। आप स्वयं सोचिए कि भला परमेश्वर आपके साथ कैसा व्यवहार करता रहा है, जिससे आप उसमें विश्राम कर सकते हैं। आपको और मुझे किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब हम बीमार या बलहीन हो जाते हैं तो परेशान होने लगते हैं। बाइबल ऐसे लोगों के विषय में जो बहुत बूढ़े हो जाते थे या जिन्हें मक्खी जैसी छोटी छोटी बातें भारी समस्या लगती है, बड़ी ही काव्य शैली में बातें करती है। ये सच है कि जब आप दुर्बल हो जाते हैं, पलंग से उठकर हाथ मुंह धोना कठिन कार्य लगने लगता है और घर में घबराहट होने लगती है, और जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो आप विभिन्न चिंताओं में पड़ जाते हैं, हृदय में चिंताएं भर जाती है। परंतु जब परमेश्वर का हस्तक्षेप जीवन में होता है और वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तो आप फिर से अच्छा महसूस करने लगते हैं और विश्राम पाते हैं। अतः आप कहें, पद 7, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। अपने परमेश्वर की ओर लौट जाएं। वो उपकार करता है और उसमें विश्राम करें। भजन 116 पद 8 और 9, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। क्योंकि मैं जीवित हो जाऊंगा, इसलिए मैं परमेश्वर के सामने चलता रहूंगा। इस भजन में शब्द करूंगा पर ध्यान दीजिए। पद 2, मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। पद 9, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। पद 13, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर। पद 17, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। पद 17, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। अतः इस भजन में मैं करूंगा कई पदों में है। यदि आप इस 116 भजन की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह के विषय में करते हैं तो बहुत सी रोचक बातें आप इस भजन में पा सकते हैं। भजन 118 तक के भजन स्तुति के भजन कहलाते हैं, जो फसा के पर्व के दौरान गाए जाते थे। गेतसमनी भाग में जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों के साथ फसा मानते समय इन्हें गाया था। यदि इस भजन पर भविष्यवाणी के रूप में विचार किए जाए तो अधिकांश भविष्य खतनों की पूर्ति दुगने रूप से होती है। चक मिसलर ने आपको इस विषय में सिखाया भी है कि वे इस विषय में सही भी है। वे आपसे हर बात प्रमाणित करने के लिए कहते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि चक एक बात में सही है कि ये रोचक बात है। वे ऐसी बातें ढूंढकर पेश कर सकते हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और मैं उनके टेप सुनना बहुत पसंद करता हूं। चूंकि अधिकांश पवित्र शास्त्र के वचनों की व्याख्या दो अर्थों में, अर्थात उसी युग के लिए और आगामी युग के संबंध में की जा सकती है, और ऐसा आप किसी भी भजन की व्याख्या यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी के रूप में करते हैं, तो यीशु द्वारा इन भजनों का गाया जाना इस बात का प्रमाण है कि ये भजन उसी के संबंध में था और वो ये जानते थे, परंतु चेले इन बातों को नहीं जानते थे। ये भजन उन भजनों में से एक हो सकता है जिसे यीशु ने एमोस के मार्ग पर अपने दो चेलों को समझाया था कि किस प्रकार से मूसा से लेकर सब नबियों की बातें उसके विषय में संकेत करती है, अर्थात उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बताती है। नीचे मृत्यु और पुनरुत्थान संबंधी बातों का उल्लेख किया जा रहा है जो इस भजन 116 में पाई जाती है। भजन 116 पद 3, मैं अधोलोक की साकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। प्रभु अनुग्रहकारी था, वो अपने वचन के अनुसार मृतकों में से जी उठा। भजन 116 पद 10 और 11, मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतवाली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। सावधान रहिए कि आप जल्दबाजी में क्या कुछ बोल जाते हैं। उतावली में कहे गए शब्दों का अक्सर बाद में लेखा लिया जाता है और इनका खंडन किया जाता है, इसलिए बोलने से पहले शांत हो जाना अच्छा होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया से जीवित हूं। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। मुझे कब का मर जाना चाहिए था, परंतु परमेश्वर ने मेरी रक्षा की है। भजन 116 पद 12, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं। पद 12 में आगे लिखा है, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मैं अपना आभार उसके प्रति दर्शनों के लिए वास्तव में क्या दे सकता हूं। जैसा कि हम आज सुबह बातें कर रहे थे, हमारे पास कोई भी ऐसी भौतिक संपदा नहीं है जिसे हम परमेश्वर को दे सके, क्योंकि सब कुछ तो पहले ही से उसका है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 26 पद में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं। भौतिक वस्तुओं में से परमेश्वर को देने की बात सोचना एक प्रकार से बद्धा मजाक है, मानो परमेश्वर को भौतिक वस्तुओं की जरूरत हो। अतः जब हम परमेश्वर को देने की बात सोचते हैं तो ये आत्मिक संसार से संबंधित बात होनी चाहिए अथवा स्वयं का जीवन होना चाहिए। एक बार मैंने एक कहानी सुनी जो किसी मिशन की आराधना के विषय में थी। वहां पर दान की एक प्लेट घुमाई गई कि लोग उसमें दान डालें। वही पीछे की लाइन में एक व्यक्ति बैठा था। जब दान एकत्रित करने वाला उसके पास आया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्लेट को कृपया थोड़ा नीचे करें। अतः उसने प्लेट को थोड़ा नीचे कर दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ा और नीचे कर दीजिए। वो इसी तरह प्लेट नीचे करने के लिए कहता रहा। अंत में प्लेट भूमि पर रख दी गई। वो व्यक्ति प्लेट में खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे पास देने के लिए केवल यही है। वास्तव में परमेश्वर यही चाहता है। वो स्वयं आपको चाहता है। मैं सोचता हूं कि अनेक अवसरों पर हम अपनी मनमानी करते हैं और अपनी भौतिक संपत्ति में से निकालकर परमेश्वर को दे देते हैं और कहने लगते हैं, इस सप्ताह हे प्रभु, मेरे पास तुझे देने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं दान में 5 सिक्के अतिरिक्त डाल रहा हूं। आशा है आप संतुष्ट होंगे। नहीं, वो पैसा नहीं, अपितु आप ही को चाहता है। वो आपकी संगति चाहता है, इसलिए उसने आपको बनाया है। संगति ही की कामना करता है। वो आपका समय चाहता है और चाहता है कि आप स्वयं को उसे दे दें। ये बड़ी रोचक बात प्रतीत होती है कि भजनकार प्रश्न करता है कि मैं उपकारों के बदले में परमेश्वर को क्या दूं? तब वो स्वयं उत्तर देते हुए कहता है कि वो उद्धार का कटोरा उठाएगा। भजन 116 पद 13, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर को देने की बात सोचना बड़ी रोचक बात है। और पहली बात जो हम करते हैं वो है, हम क्या लेने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि इस बात में तो कोई अर्थ नहीं है, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। परंतु भजन 116 पद 13, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, इस पद में वास्तव में महत्वपूर्ण अर्थ छिपा है। क्योंकि जब तक पहले उद्धार का कटोरा न उठाऊं और इस प्रकार परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम ना करूं, तब तक मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। बात यह है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट जाती है और हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। पापी है जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकता है। इसलिए हमें पहले अपने सारे पापों की क्षमा पानी है। हमें वो उद्धार का कटोरा पहले उठाना है जो यीशु मसीह हमें देता है। भजन 116 पद 13, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जब मैं उद्धार का कटोरा उठा लूंगा तो मेरी प्रार्थना करने के द्वार खुल जाएंगे और संगति स्थापित हो सकेगी। मैं तब तक परमेश्वर को नहीं पुकार सकता हूं जब तक कि अपने पापों से धुलकर स्वच्छ न हो जाऊं और उद्धार का कटोरा प्राप्त न कर लूं। भजन 116 पद 14, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। किसी और भजन में दाऊद कहता है, अपने संकट के समय में जो मन्नतें मैंने मानी थी वो सब मैं पूरी करूंगा। ये भजनकार भी संकट में था। पता नहीं वो दाऊद था या कोई और था, परंतु वो संकट में था। वो सोचता था कि वो मर ही जाएगा। संभव है उसने बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर से की होगी और कहा होगा, यदि तू मुझे बचा ले तो हे परमेश्वर, मैं सचमुच में तेरी सेवा करूंगा। अतः वो कहता है कि वो परमेश्वर की सारी प्रजा के सामने अपनी मन्नतें पूरी करेगा। शायद आप सोचेंगे कि ये वचन कहने वाला दाऊद ही हो सकता, क्योंकि उसके जैसे सार्वजनिक मनुष्य ही सब लोगों के सामने कार्य करता है। भजन 116 पद 15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ये पद यहां पर असंगत लगता है और ऐसा जान पड़ता है कि उठाकर इसे यहां रख दिया हो। भजनकार बहुत खुश था कि परमेश्वर उसे मरने नहीं देगा, परंतु उसे बिल्कुल स्वस्थ करके उन दुखों से छुड़ा लेगा जिनसे वो भयभीत है कि उनके कारण वो मर जाएगा। तब बाद में उन पर प्रकाश डालते हुए कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। कुछ क्षणों तक इस बात पर मनन कीजिए, मृत्यु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और मृत्यु के प्रति परमेश्वर व्यवहार परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। यदि मनुष्य परमेश्वर का भक्त है, यदि मसीह में विश्वासी है, जब वो मरता है तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान का घर में आने पर स्वागत करता है और उसे महिमा देता है। उनकी आपस में आमने सामने महिमापूर्ण भेंट होती है। जैसे कि एक भक्त पर्दे में से अर्थात मृत्यु में से होकर गुजरता है, वो अनमोल होता है। परमेश्वर की संतानें परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत महिमा में प्रवेश करती है, वो अपने घर में लौटती है। संदर्भ सहित देखा जाए तो ये पद यहाँ उपयुक्त नहीं जान पड़ता, परंतु फिर भी इस पद को यहाँ रख दिया गया है। भजन संहिता 116 पद 16। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूं, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मृत्यु के बंधन, भजन 116 पद 17। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहां फिर परमेश्वर भला है, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। परिणाम स्वरूप उचित ही है और स्वाभाविक है कि मैं उसे उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद दूं। उसके अनुग्रह और दया के लिए मैं उसकी स्तुति करूं। सच तो ये है कि लेव व्यवस्था में ऐसा करना मेल बलि का भाग था। इस पुस्तक के 7वें अध्याय में धन्यवाद बलि चढ़ाना मेल बलि का अंग था। भजन 116 पद 18। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। वो इन बातों को पहले भी कह चुका है और अब फिर उन्हें दोहराता है। भजन 116 पद 19। यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा, या की स्तुति करो।